Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हो गया ना, उनके लिए कई जुक्ति आदि की कोई जरूरत नहीं है। हमारे महाराज जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आप कल्पना करके देखिए, विचार करके। ऐसी यदि किसी के बुद्धि में हो जावे भावना, शास्त्र बोल रहा है बिल्कुल सही है, महाराज जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो उनको सुनने मात्र से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा ना, संशय नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हमारी विद्य जो स्वीकार नहीं कर पाती है कुतर्क के कारण, है ना, ऐसे कुतर्क को शांत करने के लिए युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर द्वितीय प्रकरण का नाम क्या हो गया? वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य मतलब मिथ्या, है ना। अनेक युक्ति के द्वारा जब हम ये बुद्धि में जब एक बार स्वीकार हो जाएगा, अरे जगत दिखाई देने पर भी वास्तविक सत्यता इसमें नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, रस्सी में सर्प, रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रजु तत्व प्रतिपत्ति। अरे रस्सी में भाई किसी को सर्प दिखता है, किसी को माल दिखता है, अपना अपना संस्कार के कारण, पूर्व पूर्व संस्कार के कारण किसी को सर्प दिखता है और किसी को माल आदि दिखते हैं, है ना। यदि आपको ये ज्ञान हो गया कि सर्प आदि वास्तविक नहीं है, इसमें थोड़ा मतांतर है, है ना। जैसे भाई देखो, पर्दे में चित्र दिखता है, आपको ज्ञान कराना है पर्दे का, है ना, चित्र में मिथ्यात्व का ज्ञान कराना है, है ना। दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार से क्या कि पर्दे का यदि ज्ञान हो जावे, हाँ ये पर्दा ही है, तो चित्र समाप्त हो जाएगा, चित्र वास्तविक नहीं है। पर्दे के ज्ञान से भी चित्र में मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाएगा। एक पर्दा ही अद्वैत ना है, पर्दा से तो कुछ अतिरिक्त है नहीं, चित्र जो दिखता है, है ना। पर्दा ही सत्य है और चित्र कैसा है? कल्पित है। एक पर्दे के ज्ञान से ही चित्र समाप्त हो जाएगा, चित्र भिन्न नहीं है, एक बात हो गई है। और दूसरी बात का इधर से हो सकता है, अरे चित्र दिखाई देने पर भी ये चित्र वास्तविक नहीं है, ये पर्दा ही सत्य है। दो बातें होगी नहीं होगी? पर्दे के ज्ञान से चित्र समाप्त हो जाएगा और चित्र के मिथ्यात्व के ज्ञान से पर्दा का ज्ञान हो जाएगा। समझेगी नहीं? तो कौन सा सरल पड़ता है? चित्र में मिथ्यात्व का ज्ञान से पर्दा का ज्ञान कराना, ये सत्य हो, ये थोड़ा सरल पड़ता है। हो गया कि नहीं? दिखाई देने पर भी जो दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, दिखाई देने पर भी वास्तविक नहीं हो जाता है। ये थोड़ा सरल आसान तरीका है, ये होगा कि नहीं? क्यों? जो ज्ञानी है, ज्ञानी का जो व्यवहार होता है, ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, है ना, वो तो कल्पित व्यवहार होता है, बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार होता है कि नहीं? ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो ज्ञानी की दृष्टि से अपना व्यवहार ज्ञान होता है, साधन होता है। अरे भाई, ज्ञानी को तो ज्ञान हो चुका है, है ना। तो लोगों के लिए जो कर्म उपासना करता है तो लोगों के लिए करेगा ना। ज्ञानी जो कर्म करता है, उपासना करता है, श्रवण भी करता है, करता ही नहीं होता है, है ना, वो अपने लिए करता है कि दूसरे के लिए करता है? हाँ, तो ज्ञानी जो कर्म करता है अपने लिए नहीं, अपने लिए वो साधन नहीं है, वो हो गया कि नहीं? वो साधक के लिए वो साधन है। ज्ञानी का व्यवहार साधक के लिए, अपने लिए नहीं है, वो अपने को तो प्राप्त हो चुका है, हो गया कि नहीं? उनके लिए कौन सा है? एक ही ज्ञान है। ज्ञानी के लिए एक ही ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं। ज्ञानी के लिए पर्दा ही है, चित्र है ही नहीं उनके लिए, दिखाई देना पर भी नहीं। लेकिन साधक को क्या समझाना है? अरे चित्र जो दिख रहा है ना, वो पर्दे में दिख रहा है, पर्दा ही सत्य है, चित्र दिखाई देने पर भी सत्य नहीं, ये आसान पड़ता है तरीका, समझे कि नहीं। और एक एक व्यक्ति में अनेक प्रकार की भावना हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, महिला है मान लीजिए, अरे महिला का स्वरूप क्या होगा, निर्णय करके दिखाओ। कोई महिला है तो महिला का स्वरूप क्या होगा, आप निर्णय ही नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय है ये आपको सिद्ध होगा, अंतर्गत्व इसका स्वरूप परमात्मा है, यही आपको सिद्ध होगा, है कि नहीं भी? एक महिला है, पति की दृष्टि से क्या है बताओ, पत्नी है कि नहीं बोलो। पति को क्या दिखाई देगी, पति को पत्नी दिखाई देगी। और पुत्र आ गया तो पुत्र छू लिया पैर माता के, गोद में ले लेती है माता, है ना। तो पुत्र की दृष्टि से क्या है, ये देखो हो गया ना। और उनका गुरु आ गया मान लीजिए, गुरु को क्या है, गुरु को क्या दिखाई देगा, गुरु को परमात्मा ही दिखाई देगी। और क्या दिखाई देगी, ज्ञानी यदि हो, ज्ञानी यदि हो तो उनको क्या दिखाई देगी, एक परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। ये दिखाई देने पर भी ये इसकी वास्तविक सत्यता नहीं है, भगवान। अथवा कोई जोगी आ गया मान लीजिए, जोगी आ गया, भले ही उनको ज्ञान न हो, उनके पास तो वैराग्य है ना, वैराग्य साधन है उनके पास, हाँ, उनको तो हाड़ हाड़ मांस का पुंज ही दिखाई देगी। और क्या दिखाई देगी, दिखाई देने पर भी हाड़ मांस के पुंज से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सही बात है कि नहीं। तो आप विचार कर लो, है ना, किसकी दृष्टि सही है, ये गुरु की दृष्टि सही है तो बाकी की दृष्टि सही है, गुरु की दृष्टि ही सही निकलेगी, जो ज्ञानी की बात कह रहा हूं। ज्ञानी की दृष्टि से वो क्या है, परमात्मा ही है। महिला कैसी है, दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, परमात्मा से तो कुछ भी नहीं, आत्मैव इदम सर्वम। ज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से पर्दा ही है, समझ में आएगी नहीं। तो इसी यही बात यहाँ पर बता रहे हैं वैतत्य प्रकरण में, कि जगत दिखाई देने पर भी है ना, इसकी वास्तविक सत्यता नहीं है, जिसमें दिखाई दे रहा है वो सत्य है, हो गया ना। ये द्वितीय इस प्रकार हम अनेक युक्ति के माध्यम से बुद्धि को हम शांत कर देंगे, कुतर्क जब समाप्त हो जाएगा बुद्धि में रहने वाला, तो बुद्धि स्वीकार कर लेगी, हाँ शास्त्र बिल्कुल सही कह रहा है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म, है ना, वही ब्रह्म, अहम अस्मि ब्रह्म, ये ज्ञान उनको हो जाएगा। दो हो गए। तीसरा प्रकरण क्या है, अद्वैत प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, है ना। ये सारा जगत मिथ्या हो गया भैया, है ना, अब ब्रह्म सत्य हो गया, फिर कहने के लिए क्या बाकी रहा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तीसरा प्रकरण क्या जरूरत है कि नहीं। कहते हैं देखो, किसी के मन में फिर शंका उड़ सकती है, उड़ सकती कैसे, कहते हैं भाई देखो वेदांती जी, जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है तुम कह रहे हो, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य कह रहे हो, ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई। जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है, ये बात कैसे बनेगी, है ना। तो दिखाई दे रहा ये यदि मिथ्या हुआ ना, उसको भी मिथ्या मान लो जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सत्य मानने की क्या जरूरत है, हो गया ना। इस प्रकार की शंका उठती है ना। वेदवादी लोग यही बात बोलते हैं, जो दिखाई दे रहा है ये यदि मिथ्या हो गया, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको सत्य कैसे मानोगे, उसको ही मिथ्या मानना पड़ेगा, समझ में आएगी नहीं है, है ना। ये ऐसी शंका यदि किसी के मन में हो, हाँ, तो ऐसी शंका का निवर्तन करने के लिए ये तीसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण का नाम हो गया अद्वैत प्रकरण, अद्वैत, अद्वैत प्रकरण। कहते हैं कि ये देखो, कोई अधिष्ठान सत्य यदि न हो तो आपको भ्रांति होगी, हाँ, निर अधिष्ठान कहीं भ्रांति होती है क्या, कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए, रस्सी रूपी अधिष्ठान यदि हो अथवा रज्जु अवच्छिन्न चेतन यदि हो तब जाकर के सर्पादि की भ्रांति होगी, है ना। बिना अधिष्ठान से ना भ्रांति होती है ना बिना अधिष्ठान से संशय होता है। संशय हो गया ना, संशय और भ्रांति में फर्क है कि नहीं? भ्रांति क्या है? भ्रांति में एक ही ज्ञान होता है, हो गया ना। रस्सी में सर्प दिखता है, रस्सी में जो सर्प का ज्ञान हुआ ये हो गया भ्रांति, इसको कहें विपरीत भावना, भ्रांति कहेंगे, भ्राम कहेंगे, हो गया ना। लेकिन संशय में क्या है? संशय का विषय अनेक हो जाता है, भाव भी होगा अभाव भी होगा, दो प्रकार का होगा। एक बार बोल रहा है सर्प और एक बार नाना सर्प नहीं, क्या है? माला है, दंड है, है ना। तो संशय का विषय भाव भी होता है, भाव पदार्थ, और संशय का विषय अभाव भी होता है। ये सर्प है तो भाव होगा, उसके बाद क्या बोल रहा है? ना ना सर्प नहीं है, अभाव भी हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो संशय का विषय भाव भी हो गया अभाव भी हो गया, लेकिन भ्रांति में क्या? एक ही होगा, क्या होगा? एक ही होगा, भ्रांति का विषय केवल भाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अधिष्ठान यदि सत्य न हो तो भ्रांति किसी को नहीं हो सकती है, है? ये जगत जहां पर दिखाई दे रहा है वो कौन है? अधिष्ठान है, वही अद्वैत है। बाकी सब क्यों दिखाई दे रहा है? ये माया के कारण दिखाई दे रहा है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, गौरपाद भगवान बोलते हैं यहां पर कारिका में, माया मात्रम इदम, ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है ना, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? माया के कारण दिखाई दे रहा है ना। किसकी माया? किसकी माया? स्वरूप की माया, अपनी माया, अपनी माया। माया दूसरे की नहीं होती है, अपनी माया से ही जीव बन जाता है। बंधन की कल्पना, माया तो कल्पना नहीं है और क्या है? माया भी कल्पना है और माया का जो परिणाम है ये भी कल्पना है। लेकिन कल्पना तो भाई बिना चेतन से, बिना अधिष्ठान से कल्पना नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती है, हो गया ना। इसलिए ये तुम नहीं कह सकते कि जो दिखाई दे रहा है ये यदि मिथ्या हो गया तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी मिथ्या मानना चाहिए ना, ये बात तो नहीं जचती है। इसलिए अधिष्ठान क्या है? अद्वैत। पर्दा अद्वैत है, चित्र हो गया द्वैत। पर्दे में तमाम प्रकार चित्र दिखाई देते हैं तो कौन सत्य है? पर्दा सत्य है, चित्र सत्य तो नहीं है, है ना। तो चित्र को यदि बुद्धि का यदि विषय चित्र हुआ, बुद्धि यदि केंद्रित हो गया चित्र में तो द्वैत आ गया, हो गया ना। और हमारी बुद्धि यदि केंद्रित होगी किसमें? पर्दे में। पर्दे से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ? फिर अद्वैत हो गया, है ना। तो ये बात यहां पर समझानी है तीसरा प्रकरण में, इसका नाम क्या हो गया? अद्वैत प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, है ना। लेकिन चौथा प्रकरण फिर क्या बाकी रहा? इसकी क्या जरूरत है? फिर जो बताना तो बता दिया, है ना। फिर इसकी क्या आवश्यकता है चौथे प्रकरण की? कहते हैं इसका नाम औलाद शांति। देखो औलाद शांति क्यों हो गया? औलाद एक दृष्टांत को लेकर कहा गया औलाद शांति। औलाद जानते हो? जैसे कोई शुष्क काष्ठ हो उसके अग्रभाग में कपड़ा बांध दीजिए और तेल लगा करके अग्नि लगा दो, है ना। उसको पकड़ करके घुमाते हैं, खेल होता था उसका, है ना। उस मसाल, मसाल मसाल को हिंदी संस्कृत में बोलते अलात, अलात। उसको घुमा करके खेल होता है, हाँ। कभी जो है गोलाकार में दिखाई देगा, कभी पुष्पाकार में दिखाई देगा, है ना। उसकी एक क्रीड़ा होती है, तरीका होती है घुमाने की, है ना। किसी को पुष्पाकार में दिखाई देगा, कमल के रूप से दिखाई देगा, है ना। तो देखो वहां पर अनेक तमाम प्रकार के दिखाई देने पर भी एक प्रकाश से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाश अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक प्रकाश ही वहां पर सत्य है, बाकी आकार क्या है आरोपित है। स्थिर कर रख दिया तो देखो उसको मत घुमाइए, स्थिर करके रख दो कुछ दिखाई देगा प्रकाश अतिरिक्त, लेकिन जिस समय दिखाई दे रहा है अलग रूप से उस समय क्या है प्रकाश ही है, हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से आदमी को तमाम प्रकार से दिखाई देते हैं एक ही वस्तु में, जैसे आपको दृष्टांत बताया ना अभी, एक महिला में अनेक अनेक प्रकार के दृष्टि से अलग अलग दर्शन होता है, किसी को पत्नी दिखाई देती है, किसी को माता, किसी को पुत्री, किसी को क्या हाड़ मांस का पुंज, जोगी को क्या दिखाई देगी हाड़ मांस का पुंज, लेकिन ज्ञानी यदि आ जावे तो क्या दिखाई देगी एक परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा ना। इसी प्रकार ज्ञानी को क्या दिखाई देगा एक अलाद का जो प्रकाश है, एक प्रकाश से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, खेल जो होता है होगा ना। ये आपको दृष्टांत बता दिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका वेदांत जो बोल रहा है वो तो सही कह रहा है, सर्वम खलु इदम् ब्रह्म और ब्रह्म अपना स्वरूप है, आम अस्मि ब्रह्म है ना, सर्वम खलु इदम् ब्रह्म मतलब जगत मिथ्या हो गया तब ना ब्रह्म ही होगा, ये तो शास्त्र अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि कभी कभी भ्रमित हो जाती है दूसरे शास्त्र को लेकर के, समझ में ना क्या दूसरे शास्त्र को लेकर के, भाई द्वैतवादी बोलता है देखो अब तुम्हारा परमात्मा कैसा है बिंब है, बिंब हो गया ना, ईश्वर कैसा है बिंब है कि नहीं, माया बिंब वशीकृत्य पंचदशी कारण ने कहा, आपका ईश्वर हो गया बिंब और जीव क्या हो गया प्रतिम्ब हो गया, प्रतिम्ब हो गया ना तो छाया हो गई ना, प्रतिम्ब हो गया है ना, यदि जीव प्रतिम्ब हो गया जी, जीव यदि प्रतिम्ब हो गया ये प्रतिम्ब को उपदेश करने के लिए परमात्मा बता लेंगे, वो बोलते हैं देखो अरे भाई भगवान कृष्ण क्या हो गया बिंब हो गया ना, बिंब हो गया कि नहीं वो तो ईश्वर हो गया ना, और तुम्हारा अर्जुन कौन हो गए प्रतिम्ब, ये सब जितने भी गीता सुनते हैं सब प्रतिम्ब हो गए ना, ये प्रतिम्ब को उपदेश करने के लिए भगवान आएंगे यहाँ पर अवतार लेंगे, बोलो प्रतिम्ब को उपदेश करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे आपका प्रतिम्ब है उसको उपदेश करेंगे तो क्या मिलेगा, उसको कुछ ज्ञान होगा प्रतिम्ब को, वो तो जड़ है उसको क्या ज्ञान होगा। हाँ देखो ऐसा आप सुनने लगेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, हाँ सही बात है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अलग अलग प्रकार के विद्वान लोग बोलते हैं ना? आपका चारवाक क्या बोलेगा, चारवाक बोलेगा अरे भाई शरीर से आत्मा भिन्न है तुम कहते हो, वेदांति से कहेगा ना, वेदांति लोग क्या बोलते हो तुम, हाँ ये हो गया क्षेत्र शरीर, इदम शरीर हम कुंते क्षेत्र मित्य विधि जाते, और आप कैसे हो क्षेत्रज्ञ हो गए, तो आप दिखाओ कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा है, दिखाओ कहीं है क्या, शरीर से हटा करके आत्मा का ज्ञान कहीं होगा क्या, आप दिखा सकते हैं तो आप कैसे दिखाएंगे उसको, शरीर से भिन्न करके आत्मा को आत्मा का ज्ञान करा सकते हैं आप, नहीं करा सकते हाँ, तो आत्मा तो कैसा है, वो तो नाम से भी रहित है रूप से भी रहित है, तो चारवाक सिद्धांत को आप कैसे बताएंगे फिर, नहीं बता सकते, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार कर लेगी कि नहीं कुछ क्षण के लिए, बात तो सही कह रहा है भैया कि शरीर ही आत्मा होनी चाहिए और कोई तो आत्मा है ही नहीं हाँ? तो इस प्रकार जो है ये शब्दों को सुन करके है ना हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आ पाती है, होगा ना, ये ब्रह्म अद्वैत है वो अपना स्वरूप है जगत मिथ्या है, ये निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि में नहीं हो पाती है, समझ में कि नहीं है ना। लेकिन यहां पर ये बात समझ लो, यदि ब्रह्म अद्वैत हो गया जगत मिथ्या हो गया, जगत मिथ्या होने तब ना ब्रह्म अद्वैत होगा जी, है ना, तो ऐसा ज्ञान ये आपके रामानुज आचार्य है, वल्लभाचार्य है, जितने भी आचार्य बड़े बड़े हुए हैं, उनको ज्ञान था कि नहीं था? है ना, वेदांत का प्रतिपाद्य अद्वैत ब्रह्म में है, ये ज्ञान उनको था कि नहीं था? था, फिर ऐसा क्यों लिखा? कोई बोलेगा? हाँ, अधिकारी के भेद से भाई ये सब अलग अलग उपदेश होता है, इस बात को तो पकड़े में रखिएगा, है ना? जिसके पास ईश्वरीय बल नहीं है, कर्म उपासना के द्वारा ईश्वरीय बल नहीं है, वो अद्वैत वेदांत का अधिकारी बन सकता है? अरे इसी ज्ञान से कैसे आपका भाई अज्ञान जाएगा? ये शास्त्र के ज्ञान से कैसे जाएगा बताओ? नहीं जाएगा ना, ज्ञान तो उसी से जाएगा। तो ईश्वरीय बल से आपको प्राप्त हो गया, परमात्मा की कृपा से। अब परमात्मा की कृपा कब होगी? जिसने उपासना किया है, जिसने निष्काम कर्म किया है, जिसने गुरु की सेवा किया है, तब जाकर के कृपा होती है। उस कृपा से जो प्राप्त ज्ञान है, समझ में ना, ईश्वरीय बल पूर्वक जो ज्ञान है, वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। ये तुम्हारी शक्ति से प्राप्त ज्ञान ये निवर्तक नहीं है, बात को ध्यान दीजिए, समझ में कि नहीं है? इसलिए बुद्धि बहुत तेज हो गई, हम शास्त्र को सुन लेंगे, ज्ञान को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज्ञान तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है, बात समझे कि नहीं? जैसे आपको समझाते हैं, देखो कोई मान लीजिए प्रवचन करता है, क्या प्रवचन करता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये उपदेश कर रहा मान लो, एक दृष्टांत आपको बताते हैं। और ऐसा प्रवचन करता है कि लोग मुग्ध हो जाते हैं, भैया भाई ऐसी वाणी का आजकल चमत्कार है, हैं? लोग जो है मुग्ध हो जाते हैं शब्द को सुन करके, समझ में ना, लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन उपदेश तो कर रहा है कि अतिथि देवो भव, लेकिन उनके घर में कोई आया तो किसके घर में? हाँ, उपदेष्टा, उपदेष्टा के घर में कोई आया मान लो, हाँ वो धिक्कार करता है, ना भिक्षा नहीं है हमारे घर में, है ना? पितृदेव भाव बोलता है लेकिन पिता को नहीं मानता है देवता के रूप से। मातृदेव भाव ये तो उपदेश करता है लेकिन माता को देवी के रूप से नहीं मानता है, समझ में ना? लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है मान लो, गुरु के ऊपर जो है बहुत निष्ठा है, शास्त्र के प्रति बहुत श्रद्धा है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन गुरु ने बोल दिया देखो तुम्हारे घर में जो आएगा ना उसको क्या मान लो, अतिथि देवो भव, वो अतिथि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तुम्हारा कैसा है, देवता है, देवता के रूप से उनकी तुम पूजा करो। जैसा सुना था अनपढ़ व्यक्ति गुरु से, जैसा सुना था ऐसा पालन करता है, अतिथि आया तो भिक्षा देता है, समझ में ना? एक रोटी कम करके भले ही न दे, ये है ना जो है पुत्र को न दे, लेकिन भिक्षा तो अवश्य देता है, समझ में ना? तो आप विचार कर लो, हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन मानता है बिल्कुल अतिथि देव भव, हैं, उसको ज्ञान होगा वास्तविक कि जो बढ़िया जो है प्रवचन करता है अतिथि देव भव, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्ञान होगा कि अनपढ़ व्यक्ति को ज्ञान होगा? आप विचार करके देख लो किसका ज्ञान सही होगा, अनपढ़ वाले का ज्ञान सही होगा? उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा अनपढ़ को, भले बुद्धि कमजोर हो लेकिन वो ज्ञान काम में आएगा, अज्ञान को निवर्तन कर सकता है, आप समझे ना? क्योंकि श्रद्धा है भैया, श्रद्धा में जो बल होता है ना, ये आपको शास्त्र के ज्ञान से बल नहीं होगा, समझ में? नायमात्मा बल ही नहीं लभ्य, कहा बल से क्या लेना, ये जो दूध बोले मले खा करके वो बल नहीं है, समझ आएगा नहीं, ईश्वरीय बल, ईश्वरीय बल। आजकल ज्ञान बहुत है, सभी के पास ज्ञान है, ज्ञान किसके पास नहीं है, है ना। ज्ञान का प्रचार खूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोलो, है ना। लेकिन ज्ञान तो बल है, है ये ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन ज्ञान को पचाने का बल नहीं है। समझ में ना, क्या ज्ञान को पचाने का बल नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है। समझ में ना, आपके पास यदि शक्ति नहीं है, बुद्धि बुद्धि में स्वीकार करने का सामर्थ्य यदि नहीं है, तो ज्ञान कैसे पचेगा बताओ, अपचन हो जाएगा ना भैया। आप यदि दस रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं, एक रसगुल्ला खाने का सामर्थ्य है, और दस रसगुल्ला यदि खाएंगे तो अपचन होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं। इसी प्रकार से आपने कर्म नहीं किया है, उपासना नहीं किया है, है ना, ईश्वरीय कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, है तो फिर सामर्थ्य कैसे आएगा ज्ञान को पचाने का, धर्म है कि नहीं है। इसलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने जो भक्ति के सिद्धांत को लिखने वाले इस अभिप्राय से लिखा, हो गया ना, अद्वैत का खंडन करके। अरे अद्वैत का खंडन नहीं करेगा तो भक्ति कैसे करेगा, भक्ति तो वही द्वैत में होगी, अद्वैत में तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने अद्वैत का खंडन किया तो उसको अद्वैत का ज्ञान नहीं था, अरे अद्वैत का ज्ञान नहीं हो तो खंडन कैसे करेगा, समझ में आएगा। जिसने चार्वाक सिद्धांत लिखा उनको भी अद्वैत का ज्ञान था, समझ में आएगा। जिसने न्याय का सिद्धांत लिखा उनको भी अद्वैत का ज्ञान था, है ना। इसके बाद थोड़ा सा विचार करेंगे, कल समय हो गया। ओम शांति शांति शांति।